Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Pujya Maharaj ke punacharan mein vandan. Kuch ghatna aisi hoti hai ki hame hamesha yaad rehti hai. और उसी समय कोई ऐसे ईश्वर की बड़ी कृपा होती है तो ऐसे संत हमारे बीच में आ जाते हैं और हमें अनुग्रहित करते हैं. महाराज जी ने अगर ध्यान होए तो बहुत ही कम समय के लिए 16 फरवरी को महाराज जी बता रहे थे 6-7 दिन के लिए. और तैतरीय उपनिषद के मंगलाचरण की समझो एक विधि की थी प्रेमपुरी के लिए और उसी मंगलाचरण की कृपा है कि महाराज जी फिर से यहां पधार रहे हैं. आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को स्वागत करते हैं. वही तैतरीय उपनिषद महाराज जी द्वारा हमें प्रवचन के रूप से सुनेंगे हम. आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन. हरिओम.
भक्त शक्ति संहिता वासल में माताओं स्ने विवेनो आप सर्वबंध हो. तैतरीय उपनिषद पर मंगलाचरण को लेकर चर्चा की थी और शिक्षा अध्याय को लेकर के थोड़ी चर्चा हुई थी. उसके पश्चात पुनः जो है प्रतिज्ञात जो है मंगलाचरण यहां शास्त्रकार कर रहे हैं उसके अंतर्गत चर्चा की जा रही है. उपासना विषयक पहले चर्चा कर रहे हैं और उस उपासना का लक्ष्य है पुरुषार्थ की प्राप्ति. तो यहां पर उपास्य रूप से ओंकार को संकेत कर रहे हैं और उस ओंकार की उपासना को लेकर के ही पहले प्रतिज्ञात्मक वाक्यों को लेकर के प्रार्थना कर रहा है ऋषि और उसमें संकेत कर रहा है यश छंदसा मृषभो विश्वरूप. पहले ही ऋषि ने कहा यह छंदसाम ऋषभ संकेत किया छंद माने वेद जो छंदों में वेदों में कैसा है तो ऋषभ. अब ऋषभ शब्द के अर्थ श्रेष्ठ भी है और कहीं कहीं ऋष धातु से लेकर के ऋषभ शब्द का अर्थ ज्ञानात्मक ज्ञान रूप भी लिया जाता है. तो यहां पर प्रसंगानुसार ऋषभ शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ. तो संकेत करते हैं यह छंदसाम ऋषभ जो वेदों में क्या है श्रेष्ठ है. जो वेदों में श्रेष्ठ है और कैसा है तो कहा विश्वरूप. जो वेदों में श्रेष्ठ है और विश्वरूप है माने सर्वरूप है. विश्वरूप का मतलब क्या है कहा जो सर्वरूप. तो जो वेदों में श्रेष्ठ और सर्वरूप है ऐसे उस ओम की तरफ संकेत करते हुए ऋषि कर संकेत कर रहा है. तो ऐसे उस ओंकार को उपास्य बनाने के लिए कहा कि जो वेदों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ है और जो सर्वरूप है. और फिर उसके बाद ऐसा कहते हुए आगे संकेत किया छंदोभ्यो अधि अमृतात संबभूव. और क्या कहा कहा जो वेद हैं उन वेदों के द्वारा उन वेदों से क्या है कहने लगे अधि अमृतात. जो अमृत है या जो अमृतत्व है ऐसे उस अमृतत्व का हेतुभूत जो अमृत है उस अमृतत्व का हेतुभूत जो उस हेतुभूत का ही जो अधिष्ठान है अधि उपसर्ग को लेकर के उसका जो अधिष्ठान है ऐसे उस अधिष्ठान की जो है उपासना के लिए है. तो क्या संकेत करते हैं कहा कि वह अमृतत्व का हेतुभूत जो है ऐसे उस ओंकार की हम उपासना के लिए यहां पर ऋषि भी संकेत करता है संभव अर्थात उस ईश्वर संकेत किया. और फिर प्रार्थना करते हैं समेन्द्रो मेधयास प्रणोतु, फिर उसी के स इंद्र, इंद्र शब्द का अर्थ यहां देवता विषयक मात्र नहीं, इंद्र शब्द का अर्थ है यहां ईश्वर रूप है। जो संकेत करते हैं इंद्रो मायावी पुर रूप ईयते, तो वहां पर संकेत क्या किया, माया के द्वारा उस इंद्र ने सारे संसार का निर्माण किया। तो वहां इंद्र शब्द से केवल जो है स्वार्गिक इंद्र है उसको ग्रहण नहीं किया, वहां पर इंद्र शब्द से लिया गया कि माया के द्वारा सृष्टि करने वाला कौन, तो ईश्वर। तो यहां पर भी वही संकेत करते हैं स इंद्र अर्थात मां मेधयास प्रणोतु, मेधा के द्वारा, मेधा से इस प्रणोतु माने हमें युक्त करे अर्थात मेधावान बनाए या हमारे अंदर वह सामर्थ्य प्रदान करे जिसके द्वारा हम उस सामर्थ्य को प्राप्त करके और उस अमृत के जो अधिष्ठान है और उसका हेतुभूत जो है उसकी उपासना करके हम जो है उस अमृतत्व को प्राप्त कर सके। इसलिए जो है ऐसे उस बल का हमें जो है या ऐसी उस सामर्थ्य का जो है हमें प्रदान करे या वो सामर्थ्य वाला हमें बनाए, ऐसा यहां संकेत करते हैं। और आगे संकेत किया फिर अमृतस्य देवधारणो भूयाशम, है ना, तो वो जो देव है वो क्या करे उस अमृत का धारण कराने वाला मैं हो जाऊं, ऐसा जो है मुझे बल दे, तुम उस अमृत को धारण कराने वाला मुझे बनाए या मैं ऐसा हो जाऊं। तो ये संकेत किया तो उस देव से ही प्रार्थना करते हुए, और वो देव क्या है तो यहां ओंकार को ही उपास रूप से ग्रहण कर रहे, ये संकेत कर रहे यहां भूमिका बना रहे। और फिर ऐसा कहते हुए आगे संकेत किया शरीरम में विचर्षणम, मेरे शरीर को वो कैसा बनाए तो विचक्षण बनाए अर्थात उस सामर्थ्य वाला बनाए। शरीर भी क्या है तो कहा एक साधन है, और साधन किसका है तो कहने लगे शरीर जो है साधन संसार के पदार्थों का भी है, और संसार के पदार्थ जो है वो शरीर के लिए साधन है, लेकिन उन साधनों से युक्त होता हुआ शरीर रूपी साधन किसके लिए है तो वो संकेत करते हैं वो अपने पुरुषार्थ के लिए। उसका जो है शरीर का जो है वास्तविक साध्य क्या है तो कहने लगे पुरुषार्थ। संसार के पदार्थ पशु आदि धन आदि जो कुछ भी है वो शरीर के साध्य नहीं, यहां संकेत करते वो शरीर के क्या है वो शरीर के साधन है, और शरीर भी स्वयं में साधन है, शरीर साध्य भी है। किसके लिए साध्य है तो कहने लगे संसार के पद पदार्थों के लिए तो वो साध्य हो गया, उस शरीर के लिए वो सब साधन है, लेकिन शरीर स्वयं में भी साधन है। तो साधन जब शरीर है तब उसका साध्य क्या है तो वहां सीधे अर्थों में कह देते पुरुषार्थ ही उसका क्या है का साध्य है, और उसका शरीर साधन है। तो शरीर जो है शरीर रूपी साधन किसके लिए है, पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने के लिए। अब पुरुषार्थ शब्द से चार पुरुषार्थों को हम लेते हैं, लेकिन यहां पर श्रेयता की दृष्टि से संकेत कर दिया जाता है कि अन्य साधन तो उसके संसार के पद पदार्थों के अंतर्गत लोक विशेष को लेकर के आ गए, लेकिन वास्तविक उसका साध्य क्या है तो मोक्ष ही उसका साध्य, अमृत ही उसका साध्य, और उस अमृत का हेतुभूत क्या है तो उसके लिए हेतुभूत जब कहेंगे तो ज्ञान ही है, क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा ही उस अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो ऐसा जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ के लिए ये शरीर है। अब ये शरीर जो है तो वो हमारा शरीर रूपी साधन कैसा होना चाहिए तो उसके लिए कहने लगे कि शरीर रूपी जो साधन है वो भी सामर्थ्य युक्त हो, वो भी सामर्थ्य वाला हो। तो इसलिए कहा कि शरीरम में विचर्षणम, हमारे शरीर के अंतर्गत भी वो विलक्षणता जो साध्य को सिद्ध करने में समर्थ हो अर्थात सामर्थ्य को प्राप्त हो या बल को प्राप्त हो, तो ऐसा बल जो है मेरे शरीर को भी प्रदान करे। शारीरिक दृष्टि से भी संकेत किया और जिह्वा में मदमत्तमा, फिर एक एक अवयव को लेके कहने लगे, मेरी जिह्वा कैसी हो जाए, तो केवल मधुयुक्त नहीं, मीठी नहीं हो जाए, क्या हो जाए, मधुमत्तमा, माने जो श्रेष्ठ मधुरता है उस मधुरता वाली हो जाए। तो ये सब सामान्य रूप से संकेत कर रहे। ऐसे ही आगे कह दिया, कर्णाभ्याम भूर विश्रवम, और कानों से जो है मैं बहुत सुनने वाला हो जाऊं, कानों से क्या हूं, बहुत सुनने वाला हो जाऊं। और इस प्रकार से कहते हुए फिर आगे कहा, ब्रह्मणा कोसोसी, क्या कहा, ब्रह्मणा कोसोसी, माने ब्रह्मणा कोसा असी, यह जो है कौन, जिसकी हम उपासना करने जा रहे, जिसे हम अपना उपास्य बना रहे हैं, वो उपास्य कैसा है, तो कहने लगे वो ब्रह्म का कोष है, वो उस अमृत का कोष है। कोष माने कोष को कह दो तो एक आवरण, क्या कोष माने क्या है, आवरण, या उस ब्रह्म के लिए रहने का स्थल विशेष, ऐसा संकेत। यद्यपि ब्रह्म वहां रहता नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर प्रतीक उपासना को लेकर के हम लोग जिस भाषा में रहते हैं और जिस भाषा के व्यवहार से समझते हैं, उसी को समझाने के लिए यहां कोष शब्द का प्रयोग कर दिया। तो वो ब्रह्म का कोष है और उसका भाष्य में संकेत किया कि जैसे तलवार का कोष क्या है, उसका म्यान, ऐसे ही यहां पर जो है ओंकार जो है वो क्या है, ब्रह्म का कोष। क्यों, ब्रह्म में वास्तव में कोष आदि नहीं, लेकिन ये ओंकार जो है ब्रह्म का अत्यंत समीपी है, क्या है, ब्रह्म का अत्यंत, यद्यपि ओंकार को सब कुछ कहा, ओंकार है इति सर्वम, ओंकार जो है वही सब कुछ है, ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म ऐसा भी कह दिया, लेकिन ये जो सारा वर्ण है वो किस लिए है, तो ओंकार को हम उपास्य बना रहे, और ओंकार की जब हम उपासना करते हैं तो ब्रह्म के प्रतीक रूप से करते, इसलिए ब्रह्म के प्रतीक रूप से उपासना करने के कारण, और वो प्रतीकता जैसे अन्य प्रतीकताएं हैं वैसा नहीं, वो श्रेष्ठ प्रतीकता है, वो ब्रह्म की अत्यंत समीपी जो है प्रतीकता है, इसलिए ओंकार को ब्रह्म का अत्यंत समीपी होने के कारण निर्दिष्टो ही ब्रह्म ऐसा संकेत किया, प्रणवो ही निर्दिष्टो ब्रह्म, यह जो प्रणव है, यह जो ओंकार है वो ब्रह्म का अत्यंत समीपी, जैसे वहां जो है को शब्द से भी कह दिया तो तलवार का अत्यंत समीपी कौन है, काम्या उसमें रहती है, अब वो इस प्रकार से वहां पर रहती, लेकिन कार्य करने के समय तक कोष से बाहर आ जाती, तो इसे संकेत यहां कर रहे हैं कि ब्रह्मणा कोसोसी, यह जो ओम है वही क्या है, ब्रह्म का प्रतीक है, ब्रह्म का अत्यंत समीपी है, और ऐसा संकेत करते हुए फिर कहा कि कोसोसी मेधया पीत, अब फिर संकेत किया मेधया, मेधा के द्वारा, अब ऐसे उस ओंकार को भी प्रतीक को भी हम ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते, तब कहने लगे क्यों समर्थ नहीं होते, तो मेधया पीत, क्योंकि मेधा के द्वारा, मेधा माने बुद्धि में रहने वाली ग्राहक शक्ति, मेधा माने बुद्धि में रहने वाली ग्राहक शक्ति विशेष का नाम यह है क्या, मेधा, तो अब उस मेधा के द्वारा पीता मने वह छिपा हुआ है या ढका हुआ है, अर्थात उस मेधा ने ही उसको छिपा दिया और मेधा जो है उसको देखने में समर्थ इसलिए नहीं हो, तो मेधा पीता वो बुद्धियों से ढक गया, सीधे अर्थ में कह दें तो वो बुद्धियों से ढक गया। श्रुतम में गोपाय, और आगे संकेत किया, मेरा जो श्रवण किया हुआ है वो उसकी क्या करो, तो रक्षा करो, ये सब जो है सामान्य अर्थ को लेकर के यहां संकेत किया। आगे संकेत किया आवहंती वितनवाना, माने मेरे लिए आवाहन करने वाली, बुलाने वाली, और जो है वितनवाना विस्तार करने वाली है, तो इस प्रकार से जो है उपासना करते हुए अपने प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारे लिए जो है माने इन वलों आदियों को लाने वाली और उस वल आदि का विस्तार करने वाली, तो श्री आदि के लिए भी संकेत किया। तो इस प्रकार से यहां पर सामान्य रूप से इस मंगलाचरण के अंतर्गत चर्चा की। अब ये वल की बात जो कही, देखो नियम ये है, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत भी एक मंत्र आता प्रारंभ में ही, इसे तोर्जे त्वा वायवस्था त्वा देवो सवितः वा प्राप्रयतु श्रेष्ठ तमाय कर्मणे आप्या द्वयम् मग्नः इंद्राय। और उसके बाद फिर इस प्रकार से चर्चा करते हुए आगे चर्चा की। अब यहां पर संकेत किया गया, तो पहले वहां पर भी शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत ये कहा, मने तोर से त्वा ऋषे, वहां भी संकेत किया, मने उस श्रेष्ठ अन्न आदि को हमें प्राप्त करो कराओ, और उस अन्न आदि को जब हम प्राप्त कर लें तो कहीं उसके बाद कहा ऊर्जे, मने हमें ऊर्जा बल प्राप्त कराओ, और बल प्राप्त हो जाए तब संकेत किया उस बल से संपन्न होकर के, क्योंकि वह देवता कैसा है, त्वा वायवस्था वायु रूप तुम हो, वायु के समान बल वाले हो, ऐसे उस देवता से प्रार्थना करते हुए और कहा, इतना ही नहीं त्वा देवो सवितः, केवल वायु रूप ही नहीं हो, क्या हो, प्रकाश रूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। तो इसलिए मैंने ऐसा संकेत करते हुए उससे प्रार्थना की कि पहले जो है उस देवता से कहा हमें अन्न ग्रहण कराओ, क्यों अन्न ग्रहण कराओ, कहा अन्न ही जब हम ग्रहण करेंगे तभी क्या होगा, कहा शरीर विलक्षणता को बल को प्राप्त होगा, और अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर में भी सामर्थ्य नहीं, लेकिन केवल ग्रहणता का ही नहीं, इसलिए आगे भी यहां समदम आदि की चर्चा भी प्रार्थना करेंगे। मने अन्न तो हमने ग्रहण कर लिया, या जो हमारे शरीर के अनुकूल पदार्थ हैं, अन्न का मतलब अतिथि अन्नम, जो जिसके ग्रहण करने से शरीर पुष्टि को प्राप्त हो, वही यहां पर अन्न शब्द सी, तो अब अन्न हमने प्राप्त कर लिया या शरीर के साधनों को प्राप्त कर लिया, लेकिन ध्यान रखना अन्न तो हमें मिल जाए लेकिन कभी कभी स्वाद से थोड़ा अधिक खा जाते तो क्या हो जाता, तो अजीर्ण हो जाता, और अजीर्ण हो जाता है तो अन्न खाया किस लिए था, इसलिए खाया था कि हमें बल की प्राप्ति हो, लेकिन जब उसने अजीर्णता पैदा कर दी तो बल न होने के अपेक्षा बल कम और हो गया, ठीक है ना। तो वहां पर संकेत किया गया, इसलिए कहा कि अन्न को इतने ही से कहने से काम चल जाता, फिर आगे ऊर्जे शब्द की बल प्राप्ति के लिए क्यों प्रार्थना की, इसलिए कि अन्न को हम साधनों को एक उचित मात्रा में एक मर्यादित रूप से ग्रहण करें, और ग्रहण करके उससे बल की प्राप्ति करें, और वो बल जब हमें मिल जाए तो बल को देने वाला भी कौन है, तो इसलिए संकेत कर दिया कि वायु शब्द का त्वा वायवस्था वायु रूप भी तुम, क्यों जानते हैं आप सब लोग, जितना भी शरीर के अंतर्गत आप बलात्मक कार्य करते हो वो कब होता है, कोई भी क्रिया करते हो तो कब होती है, तो कहने लगे शरीर में बल होता, लेकिन वो बल भी काम कब करता, वो बल है कौन, उस बल को भी प्रेरित करने वाला कौन है, हम वाणी बोल रहे हैं तो बोलना रूप जो बल है वो अभी कब है, तो यदि वायु नहीं होगी तो ये वाणी का प्रस्फुटन नहीं होगा, वायु नहीं होगी तो हाथ उठेगा नहीं, ठीक है। तो इस शरीर के अंतर्गत, और यहां तक कह दिया है रसो वही सहज श्रुति आई, तो ये यदि हेस आकाशो नश्यात कोवान्यात कोवा प्राण्यात, यदि ये आकाश नहीं होता, वहां संकेत किया तो है अपहनन आदि क्रिया प्राणन आदि क्रिया कौन करता, और ये क्रिया यदि नहीं होती तो जीवन भी नहीं होता, संकेत किया। तो इसलिए संकेत क्या किया, इसलिए तुमेव वायु है क्या है प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, इसलिए वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्म कह दिया, ब्रह्म है ऐसा नहीं किंतु प्रत्यक्ष ब्रह्म शब्द से कहा, मैंने इंद्रियों के द्वारा सामर्थ्य देने वाला इंद्रियों से ग्रहण होने वाला ब्रह्म कौन है, तो वायु है, तो ऐसा संकेत वहां, तो इसलिए तो वायु क्या है, इसलिए कहा त्वा देवो वायवस्था, तुम क्या हो, वायु रूपो, तो वायु वह सारा बल देने वाला है, वायु बल की प्रेरणा करने वाला है, उस वायु के बगैर ये कोई क्रिया संभव नहीं हो सकती, ऐसा वहां संकेत किया। और इतना संकेत ही नहीं, साथ में जो है कहा वायु भी है, और उसके बाद कहा कहने की त्वा देवो सवितुः सवितः है, सविता शब्द का प्रयोग किया। सविता शब्द का अर्थ क्या है, तो मन सूर्य और प्रसव करने वाला, ऐसा भी संकेत कर दिया। तो इस प्रकार से ऐसे देव से प्रार्थना करते हैं और अन्न को ग्रहण करें, अन्न को ग्रहण करके बल की प्राप्ति हो, और बल की प्राप्ति हो तो उस बल का प्रयोग क्या होना चाहिए, है ना? तो शक्ति परेशम परपीडनाय, हमें यदि शक्ति मिली है, बल मिला है, तो क्या करें, दूसरों को पीड़ा दें? कहा नहीं, साधु और खल के लक्षणों में जो बतला दिया स्वास्थान में, तो कहने लगे नहीं, वो किस लिए है, दूसरों की रक्षा करने के लिए या अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति करने। तो बल प्राप्त करें और उस बल को प्राप्त करके हम अपने पुरुषार्थ की सिद्धि करें, ये संकेत किया। तब वहां कहा वो कैसे होगा, तो संकेत क्रम से दिया, एक साथ तो बल प्राप्त नहीं होगा। तब कहा श्रेष्ठ तमाय कर्मणे आप्याय धुम, मने कर्म भी हैं, तो एक तो आप गीता में सुनते हो कर्म विकर्म और अकर्म। अब यहां पर जो शब्द आया कर्म को लिया, कर्म की भी गतियां फिर विभाजन कर दी, कर्म में भी भेद कर दिया, कर्म फिर श्रेष्ठ तर कर्म और फिर श्रेष्ठ तम कर्म। तो वहां कर्म के लिए नहीं कहा, अब इतना कह देने से जहां पर ये कर्म अकर्म विकर्म और फिर कर्म में कर्म श्रेष्ठतर कर्म श्रेष्ठतम कर्म, इसमें काम्य निषिद्ध तो पहले ही से निवृत्त हो गई। इतना विधान करने से काम्य और जो निषिद्ध कर्म है उनका तो वर्जन पहले ही से हो गया, और कर्म जो है अब वो कर्म को लेकर के संकेत की, तो श्रेष्ठतरम कर्म के लिए नहीं कहा, श्रेष्ठतम कर्म। और श्रेष्ठतम कर्म क्या है, तो श्रेष्ठतम कर्म है यज्ञ, इसलिए यहां जप होम की विशेष चर्चा भी करें। तो अब श्रेष्ठतम कर्म करें माने यज्ञात्मक कर्म करें, और यज्ञात्मक कर्म करेंगे और उस कर्म के करने के बाद फिर संकेत आगे कर दिया माग्न्यः इंद्राय, इंद्र आदि के भाग का जो है आप जो है हनन न करें, अर्थात इंद्र का जो भाग है वो इंद्र को प्रदान करें। तब क्या होगा, तो जी गीता में सुनतो देवान भावयता नीन ते देवा भावयंतो परस्पर भावयंता श्रेया परम। यदि जो देवताओं, जिन देवताओं ने, अब देवता सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है, हैं, लेकिन यहां तो लोग कहेंगे ये तो रूढ़िवादी हैं, लेकिन यहां पर शास्त्र जो कहता है कि पृथ्वी भी देवता है, सूर्य भी देवता है, वायु भी देवता है, चंद्रमा भी देवता, और ये क्यों कहा देवता, तो यहां पर देवता इसलिए है यदि सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तो क्या है, संसार में केवल स्थावर जंगम जितने भी हैं उनका जीवन दूभर हो जाए। वायु यदि अपने बल को नहीं दे तो भी इनका जीवन दूभर हो जाए। पृथ्वी यदि अपने से औषधियों को, और जो है पृथ्वी के समय की घटना, औषधियों को वनस्पतियों को पैदा करके नहीं दे तो क्या स्थिति होगी, और पृथ्वी जैसी तो आप सारा आश्रय भी दे रही है, आपके सारे दोषों को भी ग्रहण कर रही है और आपको गुणात्मक करके है, जितनी भी गंदगी सब पृथ्वी, लेकिन वो फिल्टर करके क्या करती, आप एक छोटा फिल्टर बना लेते हो है, अपने को वैज्ञानिक कहते हो और बड़ा अहंकार आ जाता, लेकिन पृथ्वी भी अकड़ जाए ऐसे ही तो क्या होगा। तो पृथ्वी जो हमको देती है, ऐसे ही वायु हमको देती है, सूर्य हमको देता है, चंद्रमा आदि हमको देता है, या ऐसे अन्य जो देव हैं, ये कल्पना जो देवों की है, लेकिन है तो वहां एक एक हो देवा सर्वभूते, लेकिन ये जो है माध्यम है, प्रतीक है, इनके द्वारा जब हमें प्राप्त होता है तो हमें भी इनके प्रति क्या करना चाहिए है? एक मंत्री आकर के तुम्हें जो है कुछ दे दे तो तुम क्या करते हो, ईश्वर कहोगे, ईश्वर तुम हो, भगवान तुम हो, सब कुछ तुम, और कम से कम मालाएं डालोगे, उसे धन्यवाद दोगे, और जो तुम्हें सारा जीवन दे रहा है उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं, तो जो हमें जीवन दे रहा है उसके प्रति हम धन्यवाद तो कम से कम करें, उसको कम से कम नमस्कार तो कर लें, उसके प्रति एक आस्था तो रखें, तो यही क्या है यज्ञ। तो देव तुमको देते हैं तो देवों के प्रति भी एक सद्भावना बनाना, ये क्या है? एक यज्ञ, एक आस्था रखना। लेकिन हमारी तो वहां आस्था ही नहीं होती, समस्या ये। फिर हम कहते हैं हमें ये प्राप्त नहीं हुआ, ये प्राप्त नहीं हुआ। भाई जो देने वाला है उसके प्रति तुम्हारी भावना क्या है? और जब तुम्हारी भावना ही नहीं है तो वो तुम्हारे पर प्रसन्न कैसे होगा? तो ये संकेत, तो इसलिए वहां संकेत जो कर दिया कि वह बल हमें प्रदान करे। और ये सब है श्रेष्ठतम हम कर्म करें। तो श्रेष्ठतम कर्म क्या है? कि श्रेष्ठतम कर्म ये है कि जो हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहा है, हमारे ऊपर अनुकंपा कर रहा है, कम से कम जो है हम उसके कृतज्ञ न बन पाए तो उसके प्रति सौहार्द रखते हुए कृतघ्न न बने। यदि कृतज्ञ नहीं बन पाते हैं तो उसके प्रति हमारी कृतज्ञता भी नहीं होनी चाहिए। तो इस भी कम से कम हो तो भी अच्छा। लेकिन यहां तो कह रहे श्रेष्ठ तमाय कर्मणे आप्यायध्वम, श्रेष्ठतम कर्मों को करना चाहिए। ये संकेत किया और कहने लगे श्रेष्ठ कर्मों को करके और हमको भी श्रेष्ठता प्राप्त हो गई, तब हमारे शरीर की विचक्षणता हो गई, तब क्या होना चाहिए? तो कहने लगे इतना होने पर अब इससे क्या होगा? इससे तुम्हें बल भी मिल गया, समाज में तुम्हें यश भी मिल गया और सर्व रूप से तुम समाज में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। लेकिन इतना ही जीवन का लक्ष्य नहीं। तब आगे संकेत किया आगे क्या करना है। तब कह दिया है वहां पर कि हैं क्या करो? तो कहने लगे को हम हैं कुत आयाता कहा मे जननी को मे ताता इति परिभाव सर्वम सार मन से विचार है वारम। तब जो है यहां से विचार प्रारंभ होना चाहिए और ऐसा जो है उसको जानने के लिए यह प्राप्त और उसको जानने के लिए हमें उपासना करनी चाहिए। तो उसी को यहां संकेत करते और उसे जो जानने की जो इच्छा होगी और उसको जब जान लोगे तो वही परम पुरुषार्थ है। तो उसी को जानने के लिए यहां पर जो है साधना का प्रकरण शुरू करते। अब उसकी लंबी व्याख्या नहीं करें तो अब जो है हमको क्या करना है। बल आदि हमसे कह रहे हैं कि जो छंदों में श्रेष्ठ है उसके लिए संकेत कर दिया प्रतीक रूप से जो हमारा साध्य है और ऐसा वही अमृत का अधिष्ठान है। और कोई नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो जाए, है ना? सब क्या चाहते हो? कहा मैं अमृत को प्राप्त हो जाऊं, मेरी मृत्यु न। लेकिन उस अमृतत्व का जो अधिकरण है, अमृतत्व का जो अधिष्ठान है और उस अमृतत्व को प्राप्त कराने का जो हेतु है, निमित्त है, वो कौन है? तो अधिष्ठान तो ब्रह्म है और उसे प्राप्त कराने वाला हेतु कौन है? तो ज्ञान है। तो अब वो ज्ञान हमें होना चाहिए। तब हमें यह ज्ञान करना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। इसके लिए हमारे लिए ये सारे साधनों को क्रम से बतलाते हैं क्योंकि इन साधनों से संपन्न होते ही तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए ये नहीं कहा केवल हम ब्रह्म की बात सुनकर के और हम अपने को ब्रह्म सिद्ध कर लें और सारे की सारी श्रृंखलाओं का परित्याग कर दें, तो ये नहीं कहा। न तो भगवत पादाचार्य आचार्य शंकर ने कहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि उसकी श्रेयता है, वो श्रेष्ठ है, वो जीवन का लक्ष्य है। लेकिन उन्होंने ऐसा कह करके किसी का खंडन नहीं किया। हां ये जरूर कहा कि यहां तक वो सीढ़ियां हैं और उन सीढ़ियों तक सीमित रह गए तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। अंतिम सीढ़ी क्या है? तो संकेत कर दिया अंतिम सीढ़ी तो जब जो है इसके लिए वहां संधि शब्द की चर्चा कर दी। पूर्व में जो शिक्षा विभाग था तो संधि की चर्चा की और संधि क्या है? जहां वर्णों के उच्चारण को लेकर के और प्रयत्न विशेष को लेकर के और उनके स्वरों के ह्रस्व दीर्घ आदि मात्राओं को लेकर के और जहां पर उनकी समीपता हो जाती है उसका नाम क्या है? संधि। और उसी को अधिज्योतिष है अधिप्रज अध्यात्म आदि शब्द से विभाग करके बतलाया था। तो ये संधि अब वहां पर संधि क्या? तो लोकों को लेकर के भी संकेत कर दिया था, अधिलोकम करके बतलाया था, पृथ्वी लोक क्या है, अंतरिक्ष क्या है और जो है देव क्या है, फिर उनकी संधि क्या है, ये सब संकेत किया था। फिर ये जो सब क्रम बतलाया और उस संधि में जो है मूल क्या है, ये संकेत। तो वही क्रम से यहां भी संकेत करते तो उन सब का क्या है? तो ओंकार को यहां ले रहे, ओम को ले रहे, तो ओम ही उसमें मूल है। और अब उसकी संधि कैसे? तो जैसे अकार उकार मकार, तो उसी के द्वारा सारे देव वेद और अग्नि आदि ये सब उसमें समाहित करके और तब जाकर के लोक आदि को लेकर के उस ओंकार में आगे दिखाएंगे। अन्य श्रुतियों में भी दिखलाया है और यहां जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि सबका साम्य उसी से कराया और सबकी संधि कराने वाला जो प्रयत्न है, जो बल है, उस बल से जब तुम संपन्न होगे और उस बल वाले होगे तो क्या होगा, उसके साथ समीपता हो जाए, उसके साथ संधि हो जाए। और जैसे ही उसके साथ समीपता होगी, संधि होगी, तो वह है साक्षात्कार हो जाएगा, मन ज्ञान हो जाएगा। जो साक्षात अप्रोच्छाद ब्रह्म, जो अप्रोच ज्ञान है वही तो ब्रह्म है, तो वहां फिर उसकी पृथकता भी नहीं, मन उस साध्य की हमें प्राप्ति हो जाए। इसलिए यहां क्रम से जो चर्चा की तो यहां भी कहा कि स इंद्रो मेधयास प्रणोतु। अब इस बात पर ध्यान, वह इंद्र क्या करे, वह जो है उस अमृत रूप अधिष्ठान की प्राप्ति कराने के लिए इंद्र शब्द से ईश्वर को लेते हैं और वहां ईश्वर रूप से ओंकार को ही गृढ़ कर रहे प्रतीक उपासना। वह क्या करे, कहने लगे कि हमारे लिए मेधयास प्रणोतु, हमें उस मेधावान बनाए। मेधा मतलब हमारी बुद्धि में वह सामर्थ्य, वह बल प्रदान करे जिससे बुद्धि उसको ठीक ठीक ग्रहण कर सके। इसलिए कहा मेधयास प्रणोतु, और किस लिए, तो कहने लगे वह जो अमृत का अधिष्ठान है,